भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनिसव संत नमो हरि रामा मुर भवन में या पद समान को ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्ट दोहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपान भवाब्धिपूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
दो सृष्टि है, एक सृष्टि ब्रह्मा जी बनाते हैं भगवान की शक्ति से, भगवान के संकल्प से बड़ी अच्छी बनाते हैं, और एक सृष्टि हम लोग बनाते हैं, जीव बनाता है। तो ये बाहर की सृष्टि तो भगवान बनाते हैं, अंदर की सृष्टि हम बनाते हैं। तो हम क्या बनाते हैं? ये मकान तो प्रकृति से बनता है, परंतु हम कहते हैं ये हमारा है, इसका मालिक मैं हूं, ये तुम्हारा है, ये आपका है, ये मेरा है, ये तेरा है। अब इसमें मोह होता है, इसकी कामना होती है, इसमें लोभ होता है, राग होता है, किसी से द्वेष होता है, ये जीव बनाता है। इतना हम लोग हमारी माया में खुल गए कि बहम होता ये भी भगवान ही बनाते हैं, राग द्वेष में। क्या भगवान ने रुपया बनाया ही क्यों, धन बनाया ही क्यों, क्यों बनाया? यदि रुपये में मोह करना खराब है तो भगवान ने क्यों बनाया? पूछे रुपये का उपयोग क्या है, रुपये से वस्तु ले आते हैं, तो ये वस्तु के आदान प्रदान के लिए तो भगवान ने बनाया है रुपये को, मोह थोड़ी बनाया, लालच थोड़ी बनाया। फिर रुपये होने पर लालच हो ही जाता, ये ऐसा है नहीं। जितने हमारे अंदर विकार होते हैं, हमारी बनाई हुई सृष्टि है, यदि ये अनिवार्य हो तो फिर संत महात्मा सबके मन में लोभ रहेगा, कामनाएं रहेंगी, राग रहेगा, द्वेष रहेगा, जलन रहेगी, सबके मन में रहेगी। फिर क्यों भजन साधन करें? भगवान की बनाई हुई चीज होती है वो भगवान के संकल्प से नष्ट होती है, हमारी बनाई हुई मानी हुई सृष्टि है वो हमारे द्वारा ही नष्ट होगी। शरीर मर जाएगा पर शरीर की ममता थोड़ी ही मरती है। ममता इस शरीर में नहीं कि आगे शरीर मिलेगा उसमें ममता हो जाएगी, यहां परिवार छूट जाएगा वहां भी नया ही परिवार हो जाएगा उसमें ममता हो जाएगी। तो सेठ जी कल तक के प्रसंग में यही बताए कि जीव की सृष्टि परमात्मा की सृष्टि से भिन्न है। जीव की तो कल्पना है, मेरा है, तेरा है, कल्पना माना हुआ, और भीतर में राग द्वेष मोह ममता इसका नाश हो जाएगा तो ब्रह्मा जी की सृष्टि जो बनाई इसका नाश नहीं होता, इसका नाश और ढंग से होता है। और हमारी बनाई हुई सृष्टि का नाश हमारी साधना के बिना नहीं होता। सेठ जी ये बात बता रहे थे। और इसमें बताया कि भगवान की माया और दूसरी माया में भी अंतर है। जैसे भगवान माया से अनेक रूप धारण कर लिए, बछड़े बन गए, ग्वाल बाल बन गए, तो ये भगवान की माया अप्राकृत है और दिव्य है। और ये मेघनाद वगैरह ये भी बहुत रूप बना लेते थे युद्ध भूमि में, कहीं यहां दिखे फिर वहां दिखे फिर वहां दिखे, कहां देखे बेचारे ब्राह्मण ये बानर तो घबरा गए, क्या करें, घबरा गए बानर लोग। ये बात तो क्या अंतर हुआ कि इनकी माया में तमोगुण रहता है राक्षसों की माया में, और भगवान की माया गुणातीत है। राक्षसों की माया अपने गलती से पैदा की है, थोड़ी उसमें सिद्धि है ठीक है, लेकिन भगवान की माया अप्राकृत है, दिव्य है, कल्याणकारी है, और राक्षसों की माया मोहकारी है। भगवान की माया बड़ी अलौकिक किंतु अलौकिकता है। शिव विनंची को मोही को है बपुरा आन। तो प्रश्न किया है सर, यहां तक कल हो गया, तो प्रश्न किया है कि माइक वस्तु भगवान बनाते हैं क्या? तो उत्तर देते हैं सेठ जी, नहीं, देखो यहां की सब वस्तु में चेतनता है पर दिखती नहीं है, तार लगा है बिजली है पर खटका लगाने से ही लट्टू जगेगा पंखा चलेगा, ऐसे ही भगवान भी भाव से दिखते हैं तो सही, पर भाव से भी खटके बंद कर देवे तो पंखा भी है बिजली भी है और फायदा क्या हुआ? खटका करेंगे तो पंखे की हवा मिलेगी, लट्टू का प्रकाश मिलेगा, ऐसे ही भगवान है तो सब जगह पर भीतर में भाव होता है भगवान का, मुझे दर्शन हो, मेरे में प्रेम हो, दर्शन लेने दो भले, प्रेम हो प्रेम। तो फिर भगवान दिखने लगते हैं। ईश्वर के अधिकार में सब बात है, योगी वगैरह सबकी बात जानते हैं परंतु भगवान की बात को नहीं समझ सकते। नाहम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समाप्त है, मैं जिसको जनाना चाहूं सो जाने जे देव जनाई, उसी को ही मैं जनाता हूं। मानतु वेद न कश्चन, प्राप्त हो जाए तो मेरा होकर ही जाना, भिन्न होकर नहीं, भक्तों को छोड़कर ही ये बात है, इनको छोड़कर और सब कोई नहीं जानते भगवान की माया को, कोई भक्त लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। वेदाहम समातीतानि, मैं सबको जानता हूं, वर्तमान को जानता हूं, भविष्य को जानता हूं, आज से पहले जितने भूत हुए उनको सबको भगवान जानते हैं, वर्तमान में जितने उन सबको जानते हैं, हम मरने के बाद क्या होंगे यह जानने की जरूरत नहीं है, भगवान के जानने में कमी भी नहीं है, भगवान जानते हैं, उनके ज्ञान में हमारा मोक्ष है, तो फिर होगा ही, और नहीं हो तो नहीं होगा, उनका जाना हुआ ही होगा, फिर वही काम करेगा, उसका जानना तिल भर भी कोई परिवर्तन नहीं करेगा। परंतु यदि कोई ऐसा कहता है कि भाई हमारा भविष्य में जो होने वाला है, मरने के बाद जो हमको मिलने वाला है शरीर वगैरह, वो भगवान पहले से जानते, वही होगा, फिर हम भजन साधन क्यों करें? हमारा भजन साधन क्या काम आएगा? भगवान ने हमारा भविष्य काल देख लिया कि मरने के बाद वहीं जाएगा, तो फिर हम क्यों माथा पूरी करें? तो इसका उत्तर यह है कि भगवान हमारी वर्तमान क्रिया को जान करके ये बताते हैं कि ऐसे रहोगे तो ये बनोगे, ऐसे कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा। लेकिन कल्याण के विषय में, क्योंकि कल्याण के लिए मानव शरीर मिला है, इसलिए जो कल्याण की तरफ चलता है उसके लिए तो भगवान अपनी कृपा शक्ति से उसको धक्का लगाते हैं, चल चल चलता रहे चलता रहे। ये इस प्रकार से विचार करने का है। भावी में क्या होंगे ये भगवान जानते हैं, किंतु हमको मालूम हो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि कहीं नीच योनि में न चले जाए। जितनी योनियां हैं उनमें मुक्ति नहीं है, केवल भजन साधन से ही मुक्ति होती है। जीवों को परिश्रम नहीं हो, इसलिए भगवान ने छूट दे दी कि भाई जैसा साधन करोगे, जैसे तुम व्यवहार करोगे, वो मैं जानता हूं, मैं अपना आप कर दूंगा, तुम तो इसमें लगे रहो। भगवान ने अभी हमारा शरीर कायम नहीं किया है, वो तो एक मानव शरीर में मौका दिया है कि यदि मैं कायम कर दूं तो वहां जाना ही पड़ेगा, इसलिए कायम नहीं किया है, बल्कि हमको बताया है। जैसे कोई लड़का परीक्षा देता है और अध्यापक देखते हैं कि इसने अभी कुछ नहीं लिखा है, तो उसके मन में आता है ये कुछ नहीं लिखा है, अब इसको तो जीरो नंबर मिलेगा। परंतु वही समझदारी से यूं पेपर पढ़ता है और पढ़ करके फिर लिखना चालू करता है, तब वो ये कहता ऐसे लिखेगा तो इसको ये पास हो जाएगा। यही दशा अपनी समझनी चाहिए। गीता का अर्थ बड़ा गोपनीय है, भजन साधन करके इसमें उतरने वाले महात्मा लोगों को छोड़कर गीता को जानना बड़ा मुश्किल है। मूढ़ोऽयं ना भी जाना थी, और आगे का ते विदुर युक्त चेतस है, मूड में कौन कि जो परमात्मा की प्राप्ति को छोड़ दिया और बाकी खूब भाषा का ज्ञान कर लिया, दुनिया भर की बातों का ज्ञान कर लिया, गीता कहती है वो मूड है। मैं जिस रूप में दिखता हूं वहां मेरा असली रूप छिपा रखा है। अवजानन्ति माम मूढ़ा, मनुष्य शरीरधारी समझकर मेरा तिरस्कार करते हैं। कंस मुझे गाली देता है, यदि जानता तो देता क्या? जिस समय कृष्ण को बांधने का विचार किया तो बोले कि मुझे कौन बांध सकता है ब्रह्मांड में, और सारा ब्रह्मांड मेरे में है, ऐसा कहकर के महाभारत में धृतराष्ट्र की सभा में भगवान ने बड़ा विराट रूप दिखाया। परंतु वहां भी न समझने वालों ने कहा ये तो बाजीगर है, ये तो बाजीगर जैसा रूप बनता, ऐसा बहुत बनाते हैं। तो भगवान कहते हैं जो मुझे मानव शरीरधारी समझ करके मेरा तिरस्कार करते हैं वो मेरे तत्व को नहीं जानते। तुम तो मुझे मनुष्य रूप से जानते हो, यदि अध्यात्म दृष्टि से जानते तो शाप नहीं देते। एक ऋषि ने शाप दे दिया भगवान को। वो एक ऋषि थे उत्तंग ऋषि, उत्तंग शाप दे दिया। भगवान ने कहा ऋषि जी आपका शाप मैं स्वीकार तो कर लूंगा आपकी आपकी बात रखने के लिए, लेकिन आपका शाप मेरे तक लागू होता नहीं। लेकिन आपने कह दिया मैं शाप स्वीकार करता, आइंदे मत ऐसा करना, हर किसी को चाहे जैसे बोल। फिर कहा महाराज, उस ऋषि ने कहा महाराज मेरे से तो भूल हो गई, भूल हो गई, गलती हो गई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, क्षमा हो गई। तो आप अपना और विचित्र रूप दिखाओ, चतुर्भुज रूप दिखाओ। तो भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखा दिया। देखो उनको तो भगवान ने उद्धार के लिए तैयार कर दिया, उनका उद्धार कर दिया, और उनके साप की रक्षा के लिए वो जैसा साप दिया वैसे हो गए। ये योगी और ज्ञानी अलग अलग हैं क्या सेठ? ये दोनों भगवान के दर्शन नहीं करा सकते, और खूब चेष्टा भी करें तो दिखा भी नहीं सकते, और ये देखना चाहे तो देख भी नहीं सकते। ऐसी शक्ति हर किसी में नहीं होती। वेद व्यास जी में दोनों शक्ति थी। कौरवों को समझाया, बता दिया वे धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र महान संकट में पड़ जाएगा, और संजय को शक्ति भी दे दी। 18 अक्षौणी सेना को उनने फिर रचकर बता भी दी, वहां उन्होंने रच करके भी बता दी। बात क्या हुई? बात यह हुई कि धृतराष्ट्र और गांधारी, कुंती सब जंगल में गए। युधिष्ठिर महाराज इन तीनों के वन में चले जाने के बाद बहुत दुखी हो गए। तो नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर दुखी क्यों होता है, क्या बताऊं, बहुत दुखी, मेरी मां ने इतने कष्ट उठाए, मां भी चली गई, मुझे लोग धर्मराज कहते हैं तो लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि धर्मराज है वो अपने से नाराज रहने वाले बड़े बाप को, अंधे मां बाप को घर से निकाल दिया, बेचारे के सोसो बेटे मर गए ना, इसलिए उसको किसी ने नहीं पूछा, और धर्मराज ने भी नहीं पूछा तो फिर हम लोग हमारे मायतों को क्यों पूछे, जबकि शास्त्रों में आप जैसे महात्माओं ने यही कहा है कि मायत यदि किसी प्रकार से हमको दंडित भी करे, हमारे साथ कठोर बर्ताव भी करे, तो भी उनके साथ में बराबरी का, बदला का ये भाव आना ही नहीं चाहिए। तो हाँ, इस बात का तो बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो क्या करूं, छोड़ के भाग जाऊं, मैं भी उनके पास चलूं, नहीं ऐसा मत करो, मुझे एक एक का कष्ट है, धृतराष्ट्र का कष्ट है, बड़ी मां गांधारी का कष्ट है, जन्म देने वाली मां कुंती का कष्ट भी हो रहा है, वो भी देखो छोड़ के चली गई। नारद जी ने कहा चलो मैं आपको उनसे मिलवा लाता, मिलाने के लिए, मिलाने के लिए गए तो वहां पांचों पांडव नारद जी और गांधारी, धृतराष्ट्र और कुंती, ये सब वहां थे। इतने में वेद व्यास जी आए और कहने लगे, युधिष्ठिर तुम शोक क्यों करते हो? युधिष्ठिर ने कहा जो नारद जी से कहा, वो यही कहा कि मेरी क्रिया से लोगों में आज कितना धक्का लगेगा। माँ बाप को घर से निकाल दिया, राजभवन में रहे, अंतिम समय में बेचारे के बेटे मर गए, राज्य छीन लिया, संपदा छीन ली, वैभव छीन लिया और इनको जंगल में निकाल दिया। धृतराष्ट्र से पूछा कि बेटा तू क्यों रोता है? कि मैं युधिष्ठिर के कारण से दुखी होकर नहीं रोता हूं, तो मैं मेरे 100 बेटों ने जो पाप किया और उस पाप के फल से उनको कितना भयंकर लोक मिलेगा, उस बात को याद कर करके के रोता हूं। कुंती ने पूछा कि तू क्यों रोती है? कि मेरे तो कोई दुख नहीं है, किसी कारण से नहीं रोती, बस गांधारी बहन रोती है और ये धृतराष्ट्र जी जेठ हैं, ये रोते हैं तो फिर मेरे को रोना आता है। तो गांधारी तू क्यों रोती है, तू क्यों रोती है? कि मैं इसलिए रोती हूं कि जिसको सद्ज्ञान बराबर मिलता रहा उसने ज्ञान को ठुकरा दिया, चाहे मेरे पति हो चाहे मेरा पुत्र हो, ज्ञान को ठुकराया, धर्म को ठुकराया, ऐसे मेरे बेटा बने, उनको मैंने जन्म दिया, मुझे ऐसा पता होता तो मैं इस प्रकार से इनके साथ इनको जन्म नहीं देती। तो कहा कि देखो गांधारी, ये तो तुम्हारे हाथ की बात नहीं थी, जन्म देवो न देवो ये तो भाग्य की बात है। तुमने अपने पति को सन्मार्ग की शिक्षा दी, धर्म की शिक्षा दी, तुम्हारे लिए कोई कष्ट की बात नहीं, तो क्या करें? धृतराष्ट्र का विलाप देख करके कहा, धृतराष्ट्र तुम क्या चाहते हो? कि महाराज ये बताओ कि वो कहां है, किस लोक में है, ये बता दो। तो कहा कि मैं उनको लाकर ही बता दूं, तो कि बस आदमी को मरने से पहले अपनी कोई इच्छा हो उसको या तो विचार करके पूरा कर देना चाहिए, विचार के द्वारा इच्छा शक्ति का नाश करो। पहली बात तो इच्छा करो ही मत, करो तो भगवान के अर्पित कर दो, नहीं तो विचार के द्वारा इच्छा को निकाल दो। फिर भी ना निकले तो कोई और उपाय से उस इच्छा को समाप्त करके मरना चाहिए। तुम्हारा इच्छा तो है कि एक बार उनसे मैं मिलूं, जिस लोक में है कैसे रहते हैं वैसे मिलूं, तो बताऊं। व्यास जी महाराज बता दीजिए, तो तुम तो अंधे हो परंतु तुम यहां के लिए अंधे थे, अब तुम जिस लोक में ये रह रहे हैं उस लोक से मैं तुमको बताता हूं, वहां तुम्हारे नेत्र काम करेंगे, इस लोक में तुम्हारे नेत्र काम नहीं करते थे। बहुत प्रसन्न हुआ कि देखो मैंने पुत्रों के पाप में शरीर को नहीं देखा, कौन से लोक में है वो देखते हैं। उसी समय सब गंगा के अंदर से प्रकट हुए, ये 100 के 100 ऐसा सुंदर दुर्योधन, दुशासन, ये सब प्रकट होकर के इनके साथ में कर्ण, इधर शकुनी, और बड़ी श्रद्धा से आकर सब ने गांधारी के चरणों में, धृतराष्ट्र के चरणों में, कुंती माता के चरणों में और युधिष्ठिर महाराज के चरणों में प्रणाम किया और भीमसेन से आकर यूं छाती से लगा करके मिला दुर्योधन और कहा कि देखो भीमसेन, ये जो संसार में ये जो द्वेष है ना, इसके रहते हुए बहुत कष्ट होता है और इसको निकालने से बड़ा आनंद मिलता है। मैंने तुम्हारे साथ द्वेष किया तो ऐसे ऐसे लोगों में गया, मैंने इतना कष्ट उठाया, लेकिन अंत में जब मुझे ये ज्ञान हो गया कि ये बहुत बुरी चीज है, क्यों ही मेरा शुद्धिकरण हो गया, पर कष्ट बहुत पाया। ऐसे सब ने कहा, द्रौपदी भी वहां थी, दुशासन ने जाकर द्रौपदी जो भाभी थी चरणों में प्रणाम किया कि मातृ स्वरूपा हो द्रौपदी जी, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, यदि आपको सीधे दिव्य लोक में जाना है तो आप हमारे अपराधों को क्षमा यहीं कर दोगी तो आपको बहुत ऊंचा स्थान मिलेगा। द्रौपदी जी ने बड़े स्नेह से आशीर्वाद दिया कि इन बातों को भूल जाओ, जो राग द्वेष की बातें इनको भूल जाओ और नए परिवेश में आप देखो। ऐसे करके सब मिले, कर्ण मिले, अर्जुन और कर्ण मिले, युधिष्ठिर और कर्ण मिले, पांचों भाइयों ने कर्ण के चरणों में प्रणाम किया। ऐसे करके सबके अंदर बड़ा स्नेह जागृत हुआ। युधिष्ठिर को कहा, युधिष्ठिर तुम्हारा शोक दूर हुआ कि नहीं बताओगे? हो गया। धृतराष्ट्र से पूछा, तुम्हारा शोक दूर हुआ कि नहीं? कि हो गया। कुंती माता से सबका दूर हो गया। द्रौपदी को कहा कि तुम्हारे अंदर अब क्या मेरा हृदय एकदम स्वच्छ हो गया, अब इनको भेज दूं? धृतराष्ट्र का अब मेरा मोह नहीं रहा, आप भेज दो, ओझल कर दो, कुछ मेरे अंदर मोह नहीं रहा, बल्कि मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने अपराधी पुत्रों को देखा ही नहीं, मैंने तो पवित्र पुत्रों को देखा है, इसलिए अब आप मेरे पुत्रों को मेरे से ओझल कर दो, लेकिन अब मेरे अंदर कोई शोक नहीं रहेगा, साहब अपने धाम में चले गए। ये कथा आती तो व्यास जी महाराज में ऐसी शक्ति थी। उन्होंने 18 अक्षौणी सेना को फिर रच करके, सब सेना की तो मैंने इनका बताया, 18 अक्षौणी सेना इनके पक्ष के उनके पक्ष सब मिले। परमात्मा प्राप्ति को कभी, परमात्मा की प्राप्ति वाले को कभी शाप लगता नहीं और कोई कहे कि मैं तो परमात्मा की प्राप्ति करा दूंगा तो वे पराधीन हो जाएंगे, इसलिए करा दूंगा ये अपने अंदर भाव कभी आड़े नहीं जाएंगे। क्योंकि भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं, ये तो बात ठीक है, परंतु भक्तों को ये अधिकार नहीं है कि हम भगवान से मिला दें, हम भगवान का दर्शन करा दें। ऐसा आम पावर सबको नहीं मिलता है। आम पावर क्या है? मैं लिख दूंगी साहब ये मकान मेरा है और मैं इसका अधिकार इनको देता हूं, ये चाहे जैसे चाहे जब बेच दे, कर दे, कुछ भी कर दे, और ये मैं अधिकार देता हूं, सब इस मकान के विषय में सब काम करने का अधिकार वो होता है आम पावर। तो आम पावर भगवान नहीं देते हैं, जैसे राधा जी के व्यवहार में आम पावर है, शंकर जी का पूरा अधिकार है, वे चाहे तो भगवान के दर्शन करा देते हैं। नरसिंह मेहता को शंकर ने दर्शन करा दिए। आम पावर तो वे किसी अधिक अधिकारी को ही देते हैं, हर किसी को नहीं देते। नरसिंह जी का कोई सकाम भाव भगवान में था नहीं, लोगों को केवल दिखता था। राजा ने कहा कि यदि तू भक्त है तो ये माला तुझे भगवान तेरे गले में माला डाल दे तो मैं जानू कि तू भक्त है। तब समय पर भगवान माला लेकर पहना गए। हरेक को दर्शन दादाजी और शंकर जी करा सकते हैं, हर किसी में शक्ति नहीं है। प्रश्न, कोई ऐसा उदाहरण है क्या सेठ जी कि अनधिकारी को भी दर्शन करा दिए हो? सेठ जी, हां, सोचने से हो भी सकता है। बहुत से पापियों को परमात्मा की प्राप्ति करा दी। देखो, कितने ही पापियों को काशी में मुक्ति भगवान शंकर देते ही है ना। फिर प्रश्न किया कि काशी सेवन भी तो एक साधना ही है। उत्तर, हाँ, यो तो कुछ न कुछ निमित्त तो होता ही है। सेठ जी कह रहे हैं, यो तो कुछ न कुछ निमित्त तो होता है। अपने लोग तो ऐसा करो कि शीघ्र मुक्ति मिले, इसी जन्म में मिले, ऐसे आप लगो। भगवान किससे करवा देते हैं, कैसे धक्का लगा गए, इधर मत चलो। भगवान एक अलौकिक तत्व है, उसकी ऐसी दया और महत्ता की बात है, कुछ कहते नहीं बनता है। बस किसी भी रूप से, नाम से, भगवान से जुड़ जाओ, फल भगवान की प्राप्ति होगी। ये भारी दया है, नहीं तो किसी को भी प्राप्त नहीं होगी। यानी साधन काल में जीव साधन करता है, लक्ष्य बनाकर उपासना करता है, तो भगवान उसको छोड़ते नहीं। यदि ऐसे भगवान छोड़ देते तो आज तक किसी की मुक्ति होती नहीं, महात्मा कोई बनता ही नहीं। महात्मा कोई साधन से नहीं होता है, साधन ध्यान से, साधन भजन से तो हम लोग भगवान से जुड़ते हैं। फिर कल्याण करना, महात्मा बनाना, ये तो भगवान का काम है। जैसे कोई आदमी डूबता है और डूबता डूबता वो किसी को अपना हाथ देता है, पास में आकर किनारे डूबे हाथ देवे किसी को, तो हाथ पकड़ता है। तो वो हाथ तो उसने दिया, लेकिन डूबने वाला अपने प्रयास से थोड़े ही कोई बच गया, और वो हाथ जिसने पकड़ा उसने खींचा है। इसलिए साधन भजन से हमारा भगवान से संबंध होता है, और फिर भगवान अपनी शक्ति से उद्धार करते हैं। इसलिए भगवान का जो भी स्वरूप आपके मन में जचे उसका ध्यान करो। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, हम कैसे बताएं? 5000 वर्ष पहले भगवान हुए। अब उस समय कोई फोटो कैमरा था नहीं, उस समय का कोई आदमी नहीं, फोटो कैमरा होते नहीं। अब भगवान का स्वरूप कैसे बताएं? तो अपने मन में जैसा भाव आता है वैसा ही चित्र बन गया भगवान। तो कहते ऐसे ही मान लो। क्यों मान ले जी? आपका तो रूप कोई न कोई तो होगा, सब रूप मेरा ही है। जो आज तक रूप हुआ वो मेरा है, जो अभी जो रूप दिखता है वो मेरा है, भविष्य में जो रूप बनेगा वो भी मेरा ही है। तो जितने चित्र हैं संसार में भगवान के, उनमें आकृति तो बदलती है और उसको हम देखते हैं। तो आकृति को आप ले लो, पर भगवान के शरीर में जो हाव भाव होते थे वो इन चित्रों से कैसे देखोगे? जैसे कोई आदमी, संभव तो नहीं है, पर हजार आदमियों के मन के चित्र लेना चाहेगा, भाव का चित्र लेना चाहेगा, तो अलग अलग भाव है, एक भाव है ही नहीं, फिर वो असली रूप नहीं हुआ। परमात्मा की प्राप्ति के पहले तो भूल सी की रहती है, क्योंकि जितनी उपासना है वो परोक्ष है, लेकिन उस भूल में भी परमात्मा की जो मान्यता कर ली, ये भूल अच्छी है। भूल का मतलब वास्तविक रूप तो जानते नहीं, ऐसे किसी पत्र को हम जो है हमने राम जी मान लिया, किसी ने कृष्ण को मान लिया, किसी ने क्या मान लिया, तो ये भूल तो है, क्योंकि भगवान इतने रूप में नहीं है। परंतु इस भूल से लाभ कितना है कि इस भूल से हमको परमात्मा का बोध होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं जानता नहीं हूं असली रूप, तो भगवान कहते हैं अच्छा, चाहे जैसा ध्यान करो, आप उसको असली मान करके करो, वो मेरा ही स्वरूप होगा। ऐसा कहते सेठ जी, कह रहे कोई कहे कि जी भगवान का भजन तो करता हूं, हो सकता है उतना ध्यान तो करता हूं, पर मैं भगवान के विषय में कुछ जानता ही नहीं, तो क्या ये मेरा भजन साधन ध्यान सब व्यर्थ है? ना, आप नहीं जानते हो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मानने में कच्चाई मत करो। मान लो कि नहीं, मेरे लिए यही स्वरूप है, मेरे लिए यही स्वरूप है, ऐसा श्रद्धा से मान लोगे तो मूड से मूड को पहले भगवान मिलेंगे, पंडित को नहीं मिलेंगे। आदमी ध्यान करता है प्रश्न करने वाला, तो उसकी मूर्ति का ही दर्शन होगा या सब में एक आत्मा दिखेगी, वो किसका ध्यान? तो सेठ जी ने उत्तर दिया, यदि वो मूर्ति भगवान की है और भक्ति मार्ग में चलता है तो तुष्यंती च रमंती च, उनको जो संतोष होता है, उनको जो भगवान के विषय में आनंदानुभूति होती है, चाहे ध्यान में चाहे किसी में, वो आनंद रूप से उसको परमात्मा ही मिलते हैं। कैसी छिपी हुई बात है। वही कहे कि आज भगवान की कथा बहुत अच्छी लगी, बड़ा आनंद है, वो आनंद भगवान है, क्योंकि ये सब लीला भगवान से हुई है, उसमें जो आह्लाद पना हुआ है और जो ध्यान कर करके मुग्ध हो रहा है वो भगवान से हुआ है, वो भगवान का रूप है, भगवान में ही रम रहा हूं, वाह कैसा आनंद है, ये भगवान का रूप है। और जो यूं देखता है अंदर की दृष्टि से कि सब भगवान का रूप है, आत्म रूप है, तो उस समय में शरीरों की प्रधानता नहीं रहती है, आत्म तत्व की प्रधानता रहती है। जैसे सूर्य की किरणों से हमको जल दिखता है, तो वहां जल का दिखना प्रधान है, सूर्य की किरणें प्रधान नहीं है। ऐसे ही हजारों आदमियों में जो एक परमात्म भाव आता है वो भाव मुख्य होता है, मनुष्यों के शरीर की मुख्यता नहीं होती। गजब बात, भगवान की सत्ता की सेवा और कुछ नहीं दिखता, ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं भगवान से ही मिल रहा हूं। यह परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष, परोक्ष माने छिपा हुआ। प्रत्यक्ष और अपरोक्ष एक ही होता है। भावना से भगवान मिल रहे हैं, किंतु भावना से रिजल्ट टिका नहीं रहता है।